पक्षी हो अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। कितने आए आंधी तूफान पल भर तुमको रुकना नहीं। मंजिल तेरे करीब है राही तुझको थकना नहीं। कितने आए आंधी तूफान पल भर तुमको रुकना नहीं। साथ तुम्हारे
ओम शांति। संसार में बहुत सारे लोग साधना करते हैं मोक्ष के लिए, समझते हैं कि मोक्ष में जाना अर्थात परमानेंट जन्म मरण के मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाना। लेकिन बाबा कहते हैं मोक्ष किसी को मिलता नहीं है, स्वयं भगवान को भी नहीं मिलता है, उनको भी आना पड़ता है। पुराने संसार में पुराने देह में उनको भी आना पड़ता है। लेकिन बाबा ने हम सबको जीते जी अर्थात मरजीवा बनकर मुक्ति का अनुभव कैसे करना होता है वो सिखाया। मोक्ष अर्थात संसार में समझते कि सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति, परमानेंट मुक्ति हो जाए, और मोक्ष की अनुभूति अर्थात दुख से परे जो एक परमानंद की अनुभूति उसको मोक्ष कहा जा सकता है, मुक्ति कहा जा सकता है। ऐसा मानते हैं कि जो मनुष्य जन्म मिलता है ये मोक्ष का प्रवेश द्वार है, अंतिम जन्म है। 84 लाख होने के बाद मनुष्य को जन्म जो मिलता है तो वो मोक्ष में जाने का एक प्रवेश द्वार है। तो संसार अनेक प्रकार के आधे अधूरे ज्ञान से मोक्ष में जाने का प्रयास करता है, लेकिन बाबा ने हमको बहुत सहज स्पष्ट एकदम सटीक सत्य ज्ञान देकर, हमें तीसरा नेत्र देकर, जो हम अंधकार में भटक रहे थे, हमको एक बहुत सुंदर ज्ञान जो है प्रकाश के रूप में दिया है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य दुखों के अंधकार में कैसे जीवन यापन करता है। अनेक प्रकार के साधक साधना करते हैं मोक्ष में जाने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी आशाएं इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। भले कोई शरीर छोड़ने के बाद किसी के लिए कहा जाता है कि वो चला गया, मुक्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हुआ। ऐसे भी संसार में कई हैं, समाज जो मोक्ष के लिए बहुत कष्टकारी साधनाएं करते हैं। जैसे देखेंगे जैन समाज में एक संथारा प्रक्रिया होती है, संथारा दिगंबर मुनि, तो वो जिसको मोक्ष में जाने की इच्छा होती है तो वो दृढ़ प्रतिज्ञा करता है शरीर छोड़ने की। दृढ़ प्रतिज्ञा करता है, एक कमरे में बैठकर सभी को बता देता है कि अभी मुझे इस कमरे से बाहर नहीं निकालना, और उसके कमरे को लॉक कर दिया जाता है। जब तक वो शरीर नहीं छोड़ता तब तक वो उसी कमरे में रहता है। अगर बीच में उसको ख्याल आ भी जाए कि मुझे बाहर निकाल दो तो भी नहीं निकालेंगे फिर उसको, खाना पीना सब बंद। तो देखो संसार में परमात्मा के प्रति कितना प्यार है, प्रेम है, कि अपने जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं। दवा नहीं खाते, हॉस्पिटल नहीं जाते, चप्पल नहीं पहनेंगे। देखते हैं कितनी एकदम कष्टकारी साधनाएं हैं वो। अब हाँ, मतलब जो एक घर से मिलेगा वो ही, और उनका भोजन लेने की भी प्रक्रिया भी बहुत विचित्र होती है। कई बार साध्वी इधर से आती हैं, आजकल थोड़ा कम हो गया दिखती हैं, लेकिन हमने देखा यहाँ भी पांडव में इधर उधर तो भोजन लेते नहीं है वो, सात्विक भोजन खाते हैं। तो कई बार यहाँ लेने आते थे, और साध्वियां भी पढ़ी लिखी यंग, उन्होंने अपने जीवन को और बड़े धनाढ्य घरों की थी, कैसे परमात्मा के प्रति उनको प्यार है कि उन्होंने उनको पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के इतना साधना भरा जीवन, जो इसमें बहुत कांटे कह सकते हैं, लेकिन वो कांटे भी उनको फूल के बराबर हो गए। बाल नुचवा दिए, माना बाल खिंचवा दिए सारे, इतने बालों को निकालने की प्रक्रिया भी कम नहीं होती है, बड़ी दुखदाई होती है वो। हाँ जी, तो बाबा ने कितना सहज कर दिया है, लेकिन परमात्मा के प्रति आत्माओं को कितना प्यार है, किस लिए वो मुक्ति का अनुभव करना चाहती है। तो उनको जो भोजन लेने आती थी हम देखते थे, वो अपने ही ज्ञान सुनाएंगी, दूसरे का बिल्कुल सुनेंगी नहीं। तो उनको कितना निश्चय, और यहां भोजन भी जो लेते थे तो अलग अलग पात्र में, एक पात्र में तो ऐसा होता जिसमें सारा कुछ इकट्ठा ही डाल दो। एक बार हमने देखा जलेबी बनी थी वो भी उसी में डाल दो, जो भी सब्जी बनी उसी में डाल दो सारे एक में, इकट्ठा स्वाद, मना स्वाद से परे। देखो तो सोचने की तो हमको देख के आता था सचमुच, हमको उनके ज्ञान के प्रति घृणा नहीं आती है, लेकिन उनका जो परमात्म प्रेम है उनके प्रति हमको देख एक अनुभव होता है, महसूस आती है कि सचमुच परमात्मा के प्रति कितनी समर्पणता उनकी, त्याग तपस्या है वो। और इस प्रकार का जो त्याग है वो जीवन को बहुत शक्तिशाली बना देता है। पूरी उम्र बीत जाती है, बुजुर्ग जाती हैं साध्वियां, फिर भी देखते हैं सवेरे सवेरे मृत्यु लेहा से नीचे अनहदरा जाती थी, अंधेरे अंधेरे में पैदल। तो ऐसे देखने में कई बार आता है बहुत बड़े घरों के संपन्न परिवारों के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग छोड़ के चले जाते हैं, किसके प्रति, परमात्मा के प्रेम प्रति। हाँ ये कौन, हाँ ये भी एक न्यूज आई थी, किसी घराने की राजकुमारी थी तो वो भी, उसने भी कैसे अपने आप को सरेंडर कर दिया मोक्ष के लिए। तो मोक्ष की जो उनकी व्याख्या है उतनी पूरी सटीक भी नहीं है, परमात्मा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी इच्छा है, क्यों, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है स्वतंत्रता। मोक्ष अर्थात क्या है, इस संसार के सभी बंधनों से मुक्ति। वो बाबा कहते हैं परमानेंट तो मिलती नहीं है, लेकिन हम केवल संगम युग पर ही उसका अनुभव करते हैं, क्योंकि जो मुक्ति का जो सुख है वो परम सुख है, वो छोटा मोटा सुख नहीं है। और बाबा कहते हैं अनुभव आपको संगम युग पर ही करना है, मुक्ति का भी, जीवन मुक्ति का भी। हाँ जी, तीन बाप का अनुभव इधर होता, बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, लौकिक पारलौकिक अलौकिक वो भी है आज के मुल्ले में। तो मोक्ष की अनुभूति हम देखेंगे हमारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में है, जो अंत तक अभी गीता मैंने सुना कि इस जीवन में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, किसी भी प्रकार की बाधा में रुकना नहीं है। कोई भी समस्या आए, रुकावट आए, लेकिन वो रुकावट हमको रुकावट न लगे बल्कि एक आगे बढ़ने का साधन लगे। तो पहले तो हमको देखना यह है कि जो मुक्ति का अनुभव है, मोक्ष का अनुभव है, उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो कोई ना कोई हमारी ऐसी अपेक्षा होती है, इच्छा होती है, आवश्यकता होती है, जिसको हम पूर्ण करने में जुट जाते हैं। लेकिन ये हमारी इच्छा या अपेक्षा जो लक्ष्य है वो बहुत छोटा सा होता है। अंतिम इच्छा तो मनुष्य की क्या होती है, जो बताया मोक्ष की होती है। तो हम भी जो ज्ञान योग करते हैं तो हमारी भी इच्छा क्या होती है, इस बॉडी से एक सेकंड में डिटैच हो जाए, अपने घर का अनुभव करें। जैसे कोई घर से नौकरी के लिए निकलता है, भले कोई 6 महीने शहर में रहकर फिर वापस जाता है, लेकिन उसके जो 6 महीने होते हैं शहर में रहने के, उसका ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान घर में ही रहता है, क्योंकि जहां उसने उसका रहने का स्थान है, जहां उसका जन्म स्थान है, जहां उसके रिश्तेदार रहते हैं, माता पिता रहते हैं, भले वो 6 मास कमाई करता रहेगा, लेकिन ध्यान कहां रहेगा? जहां उसके सब संबंध बने हुए, घर में रहता है। उसी तरह हम इस संसार में भी आए हैं, लेकिन हमारा असली घर तो कहां है? शांति धाम। तो सारे दिन में हमारा उधर ध्यान कितना रहता है, या फिर इसी संसार की इच्छाओं, जो अल्पकाल की इच्छाएं हैं, जो बार बार हमारे मन बुद्धि को बांध के रखती हैं, ऊपर नहीं जाने देती हैं, ये सारा पता होने के बाद भी हम उन इच्छाओं में लिप्त रहते हैं, फिर वो इच्छाएं पूर्ण होने पर दुख होता है। अच्छा, पूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो भी जाएं तो उसका परिणाम भी फिर दुख ही है, क्योंकि वो अविनाशी इच्छाएं नहीं है, वो तो विनाशी हैं, अल्पकाल की हैं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी इच्छा जन्म लेती है, वो 99 का चक्कर रहता ही रहता है, इच्छाओं का पूरा नहीं होता। तो इच्छाओं के भंवर में फिर पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। तो हमको ये देखना है कि कौन कौन सी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, जिनसे दुख की उत्पत्ति हो रही है। क्यों नहीं हम अपने आप को इस बॉडी से, इस देह से डिटैच कर अपने घर में अपनी बुद्धि को टिका पा रहे हैं। इसलिए बाबा कई दफा कहते हैं, लगभग हर मुरली में होता है, कि बाप के साथ साथ घर को भी याद करो, क्योंकि घर को याद करना अर्थात सब कुछ याद आ जाता है, बाप भी याद आएगा, वर्षा भी याद आएगा। तो सबसे पहले हमको ज्ञान का नेत्र हमेशा खुला रखना है, क्योंकि ज्ञान से ही सारी सीढ़ियां बाकी चढ़नी है। अगर हमें मंजिल पर पहुंचना है तो रास्ते का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, कि उस रास्ते में कौन कौन सी बातें हैं जो हमको पार करनी है। अगर रास्ते का परिचय नहीं है, ज्ञान ही नहीं है हमको, तो फिर उस यात्रा में बहुत सारे विघ्न आ सकते हैं। उस यात्रा को सुखद बनाने के लिए तो स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। तो संसार में भी जो दुख से मुक्ति के लिए अध्यात्म का मार्ग चुनते हैं वो, लेकिन बताया ना, वो जो अध्यात्म है वो मनुष्यों द्वारा जो रचित ज्ञान है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी उन्होंने शास्त्र बनाए हैं, अनेक कथाएं होती हैं, अनेक गुरु होते हैं, तो उनका सहारा लेते हैं। लेकिन बाबा तो गुरुओं का गुरु, बापों का बाप, जो हमको आकर सत्य ज्ञान दे रहा है, सुप्रीम गुरु है वो। आज भी मुरली में है सुप्रीम अक्षर जरूर होना चाहिए, कल की मुरली में था, बच्चे बार बार भूल जाते हैं, सुप्रीम अक्षर जरूर लिखना चाहिए। आज है ना भूल भुलैया का खेल, बाप तुम्हें घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। तो ये भूल भुलैया के चक्कर से हमको मुक्त होना है। तो सबसे पहली बात हमने देखी कि ज्ञान का नेत्र हमारा सदा खुला रहे। बहुत बार ज्ञान का नेत्र बंद हो जाता है, हमारी जो स्मृति है बहुत सामान्य हो जाती हैं, साधारण हो जाती हैं। बहुत कोई ऊंची पोस्ट पर बैठा है, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, और वो केवल सामान्य सोच पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहा है, जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक नहीं है, तो समाज का हित कैसे करेगा, देश का हित कैसे करेगा। और बाबा ने तो हम सब के कंधों पर क्या दिया है, विश्व को पावन बनाने की जिम्मेवारी। हालांकि करेगा तो बाबा ही, लेकिन फिर भी हमारा भाग्य बनाने के लिए हमको स्मृतियों से समर्थ बनाया है। प्रकृति को पावन बनाना है, विश्व को पावन बनाना है, तो ज्ञान का प्रकाश हमेशा, हमारे ज्ञान की लाइट जलती रहनी चाहिए। जैसे ज्ञान की लाइट बंद होगी, अंधकार दुख ही दुख जीवन में आएंगे। दूसरा है जीवन में त्याग चाहिए। जैसे बताया मोक्ष के लिए कितना त्याग करते हैं संसार में, हम जो त्याग करते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। अगर उसी हिसाब से देखा जाए, संसार में जो भक्त लोग त्याग करते हैं, सन्यासी साधु त्याग करते हैं, हमारा त्याग क्या है उसके आगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबा कहते फिर भी तुम बच्चों का बेहद का त्याग है, बेहद का सन्यास है, तुम बेहद के सन्यासी हो। यहां बुद्धि का त्याग है, बिल्कुल। हमने देखा मधुबन में भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनका जीवन बहुत त्याग मूर्त है, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, देखने में ऐसे लगे, लेकिन आप उनके कमरे में जाके देखेंगे, इतने सालों से रह रहे हैं, केवल एक खटिया है, 8-10 जोड़ी कपड़े हैं, बस थोड़ा सा रहने का जो सामान है बस इतना ही है। जो साल की 6 जोड़े कपड़े मिलते वो भी नहीं कई दफा ले, कितने सालों सालों तक नहीं लेते हैं। तो वो हम सबके सामने उदाहरण है। जैसे दादियों ने अपने स्थापना काल में, जब सेवाओं का फिर दौर आरंभ हुआ इंडिया में आकर, तो कितना अभावों भरा जीवन जिया, कितना त्याग उनकी रगों में समाया हुआ था। लंबा लंबा रास्ता वो रिक्शा पर नहीं, पैदल ही जाते थे। तो वो त्याग का बल, वो तपस्या का बल उनके जीवन को निखार गया, अनेकों का भविष्य बनाने के निमित्त बन गया, पाठ पढ़ा गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी त्याग ऐसा होना चाहिए कि अनेकों को पाठ पढ़ाए। जो बाबा ने बताया ना कल, बैज पहना हो, साड़ी स्वेद साड़ी बैज छाती से लगाओ तो सेवा स्वतः होती रहेगी। बाबा कहते तुम बच्चे चलते फिरते म्यूजियम हो, चलते फिरते लाइब्रेरी हो, लाइट हाउस हो, तो सेवा स्वतः होती रहेगी। तो स्वयं के जीवन में देखना त्याग कौन कौन सी बात में अभी भी जो रहा हुआ है, जो हम मोक्ष की अनुभूति की कमी महसूस कर रहे हैं, उस त्याग के अभाव में वो हमको त्याग करना है। दादियों ने एक बार दख से पुराना संसार छोड़ा तो छोड़ा, क्योंकि विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाना है। उसमें बातें तो बहुत आएंगी कि आप लोगों ने घरवार छोड़ दिया, क्या दादियों को नहीं कहा था ये सब चीजें, सब चीजें कही थी। लेकिन अगर वो उसको पकड़ के बैठ जाते तो क्या आज संसार को रोशनी दिखा पाती है, इस मुकाम पर पहुंचता? आज ऑल ओवर वर्ल्ड में 140 कंट्रीज से भी ज्यादा जहां बाबा के ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है, तो क्या ये हो पाता? तो कितना उनके जीवन में त्याग रही, कितनी तपस्या रही, तो बाकी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है। यहां भी मधुबन में कई ऐसे भाई भी हैं जो वापस कभी घर गए भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो छोटे मोटे परिवारों के, बड़े बड़े परिवारों के, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है, एकदम सिंपल रहते हैं। बड़ी बड़ी उनके पास डिग्रियां भी हैं, संपन्न परिवार को भी है, लेकिन त्याग उनका बहुत महान है। अर्थात उनके जो संकल्प हैं इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि परमात्मा के प्रेम में समा गए और संसार को त्यागना बहुत एक छोटी सी बात लगी, और वो त्याग त्याग लगता ही नहीं है। तो त्याग की जीवन में बहुत जरूरत होती है, किसके लिए? मोक्ष की अनुभूति के लिए। फिर वो त्याग हम सूक्ष्म रूप से भी, हमें अपनी विशेषताओं का, अपने गुणों का अभिमान न आ जाए, या फिर जो भी हमको बाबा से वरदान मिले हुए हैं उन वरदानों का हम जीवन में यूज करते हैं और थोड़ी वो सफलता मिलती है, उसका जो अभिमान आ जाता है, तो भी हम कहीं ना कहीं उस अभिमान, उस सफलता को पकड़ कर बैठते रहते हैं, उसी का ढिंडोरा पीटते रहते हैं, वो भी हमारे जीवन में एक बाधक बन जाती है मोक्ष की अनुभूति के नहीं करने के लिए। तो त्याग का भी जीवन में बहुत होना जरूरी है। और जो मुख्य तीसरी बात, जो मुख्य फाउंडेशन है हमारा, वो है इस ब्राह्मण जीवन का प्यूरिटी, पवित्रता। क्योंकि परमधाम पावन धाम है। अगर हमको मोक्ष की अनुभूति करनी है, मुक्ति की अनुभूति करनी है, तो जैसा घर हमारा पवित्र है, उसी तरह ये देहरूपी डाली जो हमने गीत में सुना, ये भी हमको एक घर मिला हुआ है। आत्मा इस डाली पर बैठी हुई है, अनेक वृक्षों की डालियों पर आत्मा बैठकर आई है, इसलिए वृक्षों पर बैठना उसको बहुत पसंद आ गया है। 84 जन्म क्या वृक्ष के समान ही है ना, इसलिए एक डाली को छोड़कर दूसरी डाली पर बैठ जाती है। अर्थात मन से, संकल्प से भी इस देह को तो हम भूल रहे हैं, लेकिन दूसरे के देह में फंस रहे हैं। उसी देह पर आत्मा रूपी पंछी बैठा पूरा दिन, उसी के बारे में सोच रहा है, उसी की खूबसूरती के बारे में सोच रहा है। कल बताया ना बाबा ने मुरली में, खूबसूरती क्या है? मुसीबत है, ये भी बहुत बड़ी। लट्टू बन जाते हैं, भगा के ले जाते हैं, बच्चियों को भगा के ले जाते हैं, तो ये भी मुसीबत है। तो कितने प्रकार से हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल आते हैं, कहां कहां हमारा ध्यान चला जाता है। अपनी देह को तो भूल रहे हैं, लेकिन दूसरे की देह में फंस जाते हैं, दूसरे के गुणों में फंस जाते हैं, दूसरे की कमी कमजोरियों के बारे में सोचते हैं, वो भी फंसना ही है। आकर्षण चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, आकर्षण तो आकर्षण ही है। तो जो प्योरिटी है, इसको हमको बहुत ऊपर के लेवल तक पहुंचाने के लिए भी देह रूपी डाली से हमको ऊपर रहना पड़ेगा, तो हम मुक्ति जो पावन धाम है, शांति धाम है, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो लंबे समय तक हमको अपने घर में रहना है, ओरिजिनल जो बाबा के, तो तुम्हारा असली घर तो संसार में पता है, अकेले आए अकेले जाना है सबको, किसको नहीं पता है, लेकिन वो अनुभूति कहाँ है। और बाबा ने हम सबको कितनी सहज स्पष्ट अनुभूति करा दी, अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं का हम उपयोग करते हुए फिर भी उस अवस्था का अनुभव करते हैं, लेकिन कब? जब हमारी प्योरिटी नंबर वन होगी। बाबा कहते हैं पवित्रता पवित्रता को खींचती है, तो वो परम पवित्र धाम है। आज सवेरे अमृत वेले भी जो बाबा की आवाज में सुमान बाबा ने ड्रिल के लिए याद कराया, कौन सा था वो? एक सेकंड में मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। और कितना सुंदर है, या और ये सुमान हमको बहुत अच्छा लगता है। तो एक सेकंड में परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, परम धाम में, लेकिन वहां भी श्रेष्ठ आत्मा, बाप के कितना समीप। तो वो हमारा तभी होगा जब हम संसार की इम्प्योरिटी की सारी बातों से मुक्त होंगे। क्योंकि संसार की, पूरा संसार कैसा हो चुका है बाबा, कितना ठीची संसार है, तमो प्रधान है, पतित है, दुखी है, एकदम गंदा बन गया है संसार। तो संसार के प्रति हमें जो नेक्स्ट है, वैराग्य कितना है, संसार जलेगा, संसार पूरा कांटों का जंगल ही हो गया है। बगीचे में जाओ तो नैन ठंडे हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। तो संसार के प्रति हमारा वैराग्य कहां तक हो रहा है, या बार बार बुद्धि हमारी वहीं तो नहीं जा रही है, जिस तरह जिस उस दुनिया के जिसको हम, जिन चीजों को हमने छोड़ दिया, फिर बार बार हमारा उधर राग क्यों जाता है, ये भी देखना है। देखा कि ऐसा भी होता है लंबे समय तक फोन से बातें भी होती रहती हैं, लौकिक वालों से भी कहीं की, तो क्यों नहीं छूटा, छोड़ो तो छोड़ दो। सोचते हमारे कोई ऐसी बारी के बारे में मेंटली होती है इंसान की, सोचते हमारे बिना कुछ चलता ही नहीं है, हम यहां से डायरेक्शन देते रहे किसी को, यहां बैठे बैठे सब कुछ करें, अरे छोड़ो तो छूटे। क्या बाबा कहते पाए पैसे की प्रॉपर्टी है, उस दिन था ना मुरली में, अगर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी है, हिसाब किताब पूरा करो, खत्म करो, हाँ छोड़ दो। हम तो कहते हैं नहीं मिलता छोड़ दो, चक्रो पाई पे इस संसार की प्रॉपर्टी क्या है, एकदम पूछे वो तो कुछ भी नहीं है वो, और प्रॉपर्टी के हाँ बहुत आ जाती है, वो तो निभाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम सोचते सब चलता है, खुद योग्य बन जाते हैं, लेकिन हम छोड़ते नहीं, इसलिए वो भी छोड़ देते हैं। हाँ ऐसे हमने एक बार, हम बहुत अच्छी बात सुनी, हम डिपार्टमेंट में जहाँ हम सेवा करते हैं, तो वहाँ जो भाई हैं नियमित, तो एक बार बहुत अच्छी बात है, कोई आए कुछ बात कहने के लिए कि ये सेवा तो अभी वो तो चला गया, उसके बिना नहीं होगी, कैसे होगा, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो उन्होंने कहा देखो ब्रह्मा बाबा चले गए क्योंकि यज्ञ आगे नहीं बढ़ रहा है, कितनी बड़ी बात है, ब्रह्मा ने पकड़ के रखा क्या, मेरे बिना सेवा नहीं होगी, उनकी समर्पणता कितनी थी। तो हम ऐसा सोचते हैं कि फलाना चला गया तो सेवा नहीं होगी, या हम चले जाएंगे तो कैसी सेवा होगी, पकड़ के बैठे हुए हैं, टू मच सेवा बढ़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना न्यारा होके रहेंगे उतना परमात्मा का प्यारा बन जाएंगे। तो इन संसार की चीजों से हमारा वैराग्य दिन प्रतिदिन गहराई गहराता जाना चाहिए, क्योंकि वैराग्य जब तक हमारा वैराग्य की अग्नि दहकती नहीं है तो हमारा मन बुद्धि मुक्ति की अवस्था का अनुभव कैसे करेगा। और बाबा कहते हैं संगम पर ही अनुभव करना है उसको सबको, यह अनुभूति का समय चल रहा है, इसमें हमने अनुभूतियां नहीं की, ऊंचते ऊंचे अनुभूतियां नहीं की तो कब करेंगे, वो फ्यूचर में थोड़ा नहीं करेंगे। परमधाम में कुछ अनुभव ही नहीं है, सोए हुए हैं, नींद का अनुभव तो अब करना है, जो रात सारी रात सोते हैं उसमें पता थोड़ा होता है हम, लेकिन सोने के बाद पता चलता है। तो वो सोने के बाद का जो पता है वो अनुभव करना, अर्थात परम धाम में हम रह रहे हैं उसकी अनुभूति हमको निरंतर होती रहनी चाहिए। कितना हल्का लगता है सोने के बाद, सारी थकान दूर हो जाती है। तो नींद राजयोग भी क्या है, एक नींद की अवस्था है वो, लेकिन जागते हुए जीते जी मौत की अवस्था जिसको कहते हैं, आत्मा की है अवस्था वो। हाँ आज की मुरली में ये क्यामत का समय चल रहा है, तुम्हें 21 जन्मों की कमाई जमा करने के लिए पढ़ाई में आपसे लग जाना है, ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ जहां सोचना है वहां तो सोचना ही, निमित्त बन के ऐसा नहीं है कोई बात सोचनी नहीं है। हाँ वहां तो जहां हाँ व्यर्थ में ऐसा कुछ ना हो, कर्म तो हमको निष्ठापूर्वक करना ही है, वो तो करने हैं, जो हमको बाबा ने दायित्व सौंपे हैं, जिम्मेवारियां थोड़ी बहुत नहीं है, वो भी हमारा भाग्य बनाने के लिए, उनको हम ये नहीं समझेंगे कि मैं ही निभाऊंगा इनको, बस उसको पूरा जिम्मेवारी पूर्वक निभा दो तो हम हल्के होके फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बात थी कि वैराग्य होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो देह से चीजों से लगाव आसक्ति होती है। देखा कई बार छोटी छोटी चीजों से आसक्ति होती है, इंसान को छोड़ता नहीं है, अगर थोड़ी भी उस चीज का नुकसान हो गया पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहेंगे, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, अरे छोड़ो और आ जाएगी चीज, एक छोटी सी चीज गई बड़ी चीज आ जाएगी, अपने आप आएगी। लेकिन अगर हमारा उधर बुद्धि हो गया उस चीज में तो दूसरी चीज नहीं आने वाली नहीं है। हाँ अब घर जाना है ये तो हमको पता है, लेकिन जाते कहाँ हैं हम, सारे दिन हम कितने जाते हैं, रूम में आ जाता है, जब ये गीत चलता है, जब कोई शरीर छोड़ता है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, कितना अच्छा लगता है वो। तो रोज एक बार गीत तो सुन ही लेना चाहिए अलग से कमरे में। हम सोचते दूसरे जाए क्या फर्क पड़ता है, ये याद रहता है कि वो सबको जाना, ये नहीं याद रहता है हमको नहीं जाना, ये याद रहता है। तो पता है संसार में खाली आता है, खाली हाथ जाना है, लेकिन चीजों से आसक्ति इतनी है, उनको हमने पकड़ के इतना रखा हुआ है, उतने मोह इतना बढ़ गया उन चीजों से, फिर देह से अपनी देह से मोह है, थोड़ा भी कुछ होता है तो कितना हाय तोबा मचा देते हैं। हाँ सार संभाल करनी है, लेकिन उसी बीमारी के बारे में चिंतन नहीं करते बैठ जाना है, अगर हम ज्यादा चिंतन करेंगे तो वही चिंता का रूप ले लेती है। देखते हैं कोई कोई भाई हमारे मधुबन में ऐसे हैं, छोटी मोटी बीमारी होती है तो डोंट केयर, अपने आप ठीक हो जाती है, उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। तो जीवन में उन्होंने अनुभव किया हुआ है, क्योंकि दादियों को देखो आप प्रैक्टिकल में, हमने खुद देखा है हॉस्पिटल में, कई दफा जाते दादी शांता मणि को दिखा है, वो सारे नाली वाली लगी है लेकिन एकदम शांत मुद्रा में हर्षित मुख एकदम बैठे हो, कोई फर्क ही नहीं उसका। अभी भी देखते हैं दादियों को, कोई को दादी को तकलीफ, हम सोचते हैं कि तकलीफ होती है, उनको तकलीफ कोई नहीं है, वो तकलीफ से परे हैं वो, कि उनकी उनकी तपस्या की अवस्था, उनका लंबे समय का अभ्यास शरीर से डिटैच रहने का, वो तो उनको और अनुभव करा रहा है, वो तो एक सेवा का माध्यम है, लेकिन हमारा एक संकुचित दृष्टिकोण है जिसके कारण हम सोचते हैं भाई इतने साल होने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, और हमको पाठ पढ़ाने के लिए है। एक दफा ओम शांति भवन में हम सब ने देखा होगा, दादी जी गुलजार दादी जी क्लास करा रहे थे और पीछे से कितनी स्मेल आ गई थी खतरनाक। तो कुछ जानवर बिजू वगैरह मर गया था तो बहुत खतरनाक स्मेल आ गई उसमें, डक चलाया, एयर डक चलाया तो उसकी स्मेल फैल गई एकदम। जैसे रास्ते में कोई जानवर मरा होता है, बिल्ली मरी, तो कितनी बदबू आती है उसकी, तो उसी तरह की बदबू आ गई। तो कई लोग बीच में उठे और दादी आराम से बैठी, दादी ने पूछा किस लिए उठ के जा रहे हो, किस लिए उठ के जा रहे हो, तो बोला दादी स्मेल आ रही है। कौन सी स्मेल आ रही है? तो माना उनका कॉन्शियस जो है ना, जिस कर्तव्य को करे उसके प्रति, स्मेल के प्रति कॉन्शियस नहीं था। लेकिन हम बातों को पकड़ लेते हैं, छोटी मोटी बात आती है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो इन बातों को पकड़ के बैठेंगे तो जीते जी मुक्ति का अनुभव कैसे होगा? बाबा कहते हैं तुम्हारा मर्जी वजन में, अब मर ही गए उस दिन बाबा ने याद की फांसी लगाई दी, तो फांसी लगाने के बाद पुराना क्यों याद आ रहा आपको? ये याद की फांसी पर बाबा कहते चढ़े रहो, अब फांसी लग गई तो कौन याद आएगा, फिर सब भूल गया पुराना। तो माना रस्सी किसी ने लटक ठीक से नहीं लगाई, उसको हम दोष दे रहे तो रस्सी को टाइट कर लेना सवेरे सवेरे, अगर नहीं हो आपसे तो किसी दूसरे को बोलना, रस्सी टाइट कर देगा वो। अर्थात ज्ञान की स्मृति हमको रहेगी तो याद की फांसी पर हम चढ़े रहेंगे। तो हमको देखना है कि वैराग्य हमारा पराकाष्ठा। नेक्स्ट है जीवन में साधना का होना, और ये सब चीजें बिना साधना के होना जरूरी पूर्ण नहीं होगी। ये साधना हमारी जितनी अच्छी होगी, जितना उसकी गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी होगी, तो हम मुक्ति का सहज अनुभव कर सकते हैं। तो योग में बैठने का भी चस्का आएगा, खींचेगा, अट्रैक्शन होगी, मजा आएगा उसमें। फिर उसमें हमको ये नहीं हमको टाइम पूरा करना है, नहीं, जहां भी हम बैठे हैं, चाहे हम ऑफिस में सेवा कर रहे हैं, चाहे घर में कोई सेवा कर रहे हैं, चाहे यात्रा पर हैं कहीं भी, तो हम उस अवस्था में भी साधना का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि साधना हमारे जीवन को साधेगी, अच्छी तरह से तपाएगी, निखारेगी, हमारे कर्मेंद्रियों को वश करेगी, हमें वो सोचने के लिए विवश नहीं करेगी अनावश्यक बातों के लिए। जितना संकल्प बाबा कहते एक एक संकल्प तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है। दिन टाइम के बारे में टाइम कितना वैल्यूबल है, तो हम ब्राह्मणों के संकल्प भी छोटे मोटे नहीं है। बताते ने संकल्प किया शेर ना आ जाए, शेर ना आ जाए तो शेर आ गया, तो हम ब्राह्मणों के संकल्प भी ऐसे हैं, माया ना आ जाए, माया नहीं तो माया आ जाएगी। तो संकल्पों में ताकत बढ़ेगी साधना के बल से, नए नए संकल्पों का उद्गम होगा, उदय होगा, नए नए संकल्प अवतरित होंगे, और नए संकल्प में ऊर्जा होती है। जैसे बाबा ने कल मुरली में बताया था, नई आत्माएं ऊपर से आती हैं तो कैसी होती हैं, शक्तिशाली होती हैं वो। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और नए नए जो संकल्प आते हैं वो हमको एकदम ऊर्जावान बना देते हैं, ताकत बना देते हैं, क्योंकि नई खुराक मिल रही है समय अनुसार। इसलिए जितने भी कई दफा क्लासेस सुनते हैं, बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करो, वो कहां से आएंगे? क्योंकि इस ज्ञान को सुनते सुनते क्या होता है, नए संकल्प हमको मिलते नहीं है और केवल हम उन्हीं संकल्पों के आधार पर चलते रहते हैं। लेकिन उसमें हमको नवीनता अनुभव करनी है, कुछ क्रिएटिव करना है, और ये साधना के बिना होने वाला नहीं है। सो साधना का जीवन में होना बहुत अनिवार्य है। एक तो जो सामान्य दिनचर्या हमारी अमृत मिले नुमा शाम, वो तो ठीक है, लेकिन सारे दिन में बीच बीच में, और साधना केवल योग को ही साधना नहीं कहेंगे। साधना अर्थात अगर हम किसी को कोई विषय हमको टॉपिक मिला चिंतन करने के लिए, पूरी तरह उसी में डूब जाना, उसी के बारे में बार बार सोचते रहना, तो वो भी एक साधना का रूप है, ताकि हमारा मन बुद्धि पूरा उसमें एकाग्र हो जाता है। उस टॉपिक के प्रति गंभीरता से विषय पर चिंतन करें गहराई से, तो हमको नए नए अनुभवों के मोती मिलेंगे, और वो मोती हमारे अपने बन जाएंगे, और वो एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे। जो माया अनेक रूप से, भिन्न भिन्न रूप से, चाहे स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से, चाहे हमारे अपने विचारों के रूप में, या कोई दूसरा बोल बोलता है, तो वो सुरक्षा कवच हमको सेफ रखेगा, दूसरी तरफ बुद्धि जाएगी नहीं है। तो ये भी एक साधना है, दादियों का जीवन ही साधना में हो गया। दादियों को हमने देखा सभी ने, ऐसा थोड़ी दादी योग के लिए बैठी रहती थी, नहीं, उनका जीवन ही साधना में हो गया। तो कोई भी कार्य को तन्मयता से करना, एकाग्रता से करना, ये भी एक साधना का अंग है। तो यह है जीवन को साधना बनाना, साधनामय बनाना है। और फिर है जीवन में समर्पणता कितनी है। जितनी हमारे जीवन में समर्पणता होगी, चाहे वो तन मन धन जन से संबंध संपर्क, श्वास से, संकल्पों से। तो समर्पण भाव भी हमारे में बहुत जरूरी होना चाहिए। समर्पणता कितनी है, नहीं तो बुद्धि खींच रही है इधर उधर, कहां क्यों नहीं समर्पणता हो पा रही है, कहीं तो हमारे में कमी है, कहीं तो हमने उन चीजों को पकड़ के रखा हुआ है जो समर्पणता के रास्ते में बाधक है। भगवान से भी कुछ प्यारा बना के रखा हुआ है और वो प्यारा एक दिन अल्लाह को प्यारा करा देगा, भगवान के पास पहुंचा देगा वो। लेकिन भगवान का प्यार तो नहीं मिलेगा ना, सत्यम शिवम सुंदरम एक ही है, उसका प्यार अनुभव करने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा। जैसे वो परम पवित्र है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा ऑफिसर है तो उसकी बात को समझने के लिए उसके जैसी बुद्धि होनी चाहिए। जैसे बताया था ना उस दिन में, डॉक्टर की लिखावट कौन समझ सकता है, डॉक्टर ही समझ सकता है, वो मेडिकल स्टोर वाले समझ सकते हैं, मरीज बड़ा कम समझता है, असिस्टेंट समझ लेते हैं, ये तो HOD है, उसको मरीज नहीं समझ पाते। अगर मरीज समझ ले तो वो कमाई खत्म हो जाएगी उनकी। तो बाबा परम पवित्र आत्मा है, तो उसके जो वाइब्रेशन अनुभव करने के लिए, उसकी जो उसका जो प्यार है, रूहानी लव है, जो कल की मुरली में था ना, तुम्हारा लव एक बाप से होना चाहिए, तो वो अनुभव करने के लिए हमको उसके जैसा बनना पड़ेगा। लंबे समय तक बताया ना, भले उस दिन क्लास में बताया था, रात्रि क्लास में, कि संसार में ये तो जानते हैं परमात्मा कोई है, बस केवल इतना पता चल जाए कि ये बिंदु परमात्मा है, बाकी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चले, और सारे दिन उसी को ही देखते रहो, बस कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो उसको भी पहुंचेगी आवाज, तो पहुंचेगी, मुझे कोई याद कर रहा है। हाँ, तो बिना परिचय के केवल बस इतना ही, ये परमात्मा है, बस इतना निश्चय करके बैठ जाओ सारा दिन और केवल उसी को ही देखते रहो, तो कुछ तो उसकी किरणें पहुंचेंगी अपने पास। हमको तो परिचय है, हमको तो सब उसका मालूम है, वो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, दुख करता सुख करता है, अर्थ सहित तुम बच्चों को मालूम है, बाबा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, लास्ट मोमेंट तक हमारी परीक्षा होती है। हो सकता है, बताया ना, 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, 4 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो पहले जो 3 घंटे 59 मिनट है, हो सकता है नहीं अनुभव हो और लास्ट के मिनट में अनुभव हो जाए, इससे बाबा कहते हैं अंतमति सुगति। तो परीक्षा चल रही, इसलिए इस ज्ञान मार्ग में किसी भी हालत में हमको डिसहार्टेड नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना है, हाँ जी, हार्ट फेल नहीं होना है। तो जीवन में साधना होना बहुत जरूरी है, समर्पणता होना बहुत जरूरी है, और लास्ट में है परमात्म प्रेम, जिससे प्रेम होता है ना वहां समर्पणता भी सहज हो जाती है, पवित्रता को धारणा करना भी आसान हो जाता है, साधना भी सहज हो जाती है, ज्ञान को अप्लाई भी करना सहज हो जाता है। प्रेम, परमात्म प्रेम क्या है, एक जादू है, कमाल करने वाला है। ईश्वरी स्नेह की मुरली चली ना उस दिन, ईश्वरी स्नेह कैसा है, इस समान बनना आसान हो जाता है, हाँ जी, जल का काम करता है, पानी का काम करता है, जिससे स्नेह होता है ना उसकी याद बार बार आती है, उसी की तरफ वो देखता रहता है, उसको ढूंढता है कहाँ है, अगर नहीं दिखे तो 100 लोगों से पूछेगा, वो उसी का ख्याल आता रहता है, स्वप्न में भी ख्वाब ख्यालों में भी वही घूमता रहेगा या घूमती रहेगी जो भी है, क्योंकि संसार में तो ऐसा होता है। तो हम बाबा को सर्वसुंदर से याद करें, उसको वो सच्चा सच्चा कौन है, माशूक है, उस दिन बताया था ना आशिक और माशूक, आशिक बनो एक माशूक को याद करो, 17 नंबर। तो एक सच्चा सच्चा माशूक है वो, तो सारे दिन में उसके बारे में हम ख्याल करते रहे, सर्वसंबंधों से उसको याद करें, सर्वसंबंधों से बाबा को लिखें पत्र उसको भी, तो भी प्यार बढ़ेगा, और प्यार ऐसा जादू है जो हमको सहज ही एकदम सारी दुनिया से उपराम कर देता है वो। तो हाँ जी, आने जाने की धुन लगी रही कि अब हमको जाना है, जाने की धुन लगी, आने की कमर है। आ तो अपने आप जाते हैं। बाबा ने बताया था ना उस दिन, बाबा ने बताया था ना कि 1 सेकंड में डिटैच हो जाओ, लेकिन बाबा ने साथ में भी बोला था, ये नहीं कि 1 सेकंड में और तुरंत नीचे आ जाओ, 1 सेकंड में घर में पहुंच जाओ, नीचे नहीं, नीचे तो अपने आप ही आ जाते अपन लोग। ऊपर से गिर पड़ते हैं डराम से। तो हमको जाने जाने का प्रयास करना है, बार बार डिटैच होना है, बार बार डिटैच होना है। तो जीवन में मुक्ति का, मोक्ष की अनुभूति करने का अगर हम ब्राह्मण नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कितना बड़ा हमको बाबा ने अनुभव दिया है कि संसार में जिस मोक्ष को अनुभव करने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए, या मोक्ष की प्राप्ति के लिए कितने कष्टकारी साधना अपनाते हैं, कितनी साधनाएं करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, कितना खाना पीना उनका चेंज हो जाता है सारा। लेकिन बाबा ने हम सबको कितना नाजों से पालकर मोक्ष की अनुभूति अनुभव करने का, जो मोक्ष की अनुभूति का मार्ग कितना सहज बता दिया। तो हम सब कितने खुश नसीब हैं, कितना हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, पद्मों का पद्मा पद्म भाग्यशाली हम बच्चे हैं। तो इस परमानंद अवस्था का अनुभव करने के लिए सबसे पहली बात जो चर्चा में आई कि ज्ञान का नित्र सदा खुला रहे। ज्ञान बाबा कहते हैं हमेशा बूंद बूंद से बूंद बूंद टपकता रहे बुद्धि में, ताकि हम हमेशा रिफ्रेश रहे। ठंडा पानी ऊपर से पड़ता रहेगा ना तो कभी क्या होगा, नींद नहीं आएगी, अर्थात बेहोशी की अवस्था नहीं होगी, सुस्ती नहीं आएगी, मिस एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। तो ज्ञान एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। ज्ञान तो एक चोब चिन्नी की तरह है, खुराक है हमारे लिए, च्यवन प्राश है, दवाई है, इंजेक्शन है, तलवार है, डाल है। कितने ज्ञान उपमा, ज्ञान के लड्डू अंदर में फूटते रहने चाहिए, फूटते नहीं बल्कि वो खाते रहने चाहिए ज्ञान के लड्डू। तो सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश हमेशा हमारे जीवन में जगमगाता रहे। दूसरी बात त्याग, जीवन में त्याग होना बहुत जरूरी है। बहुत सब चीजें छोड़ देनी है जो हमारे काम की नहीं है, या इस मोक्ष की अनुभूति में कोई विघ्न बन रही है, वो चीजें छोड़ देनी है। और वो हम खुद को ही पता, हमको दूसरा नहीं बताएगा हमारे जीवन में कौन कौन सी चीजें जो त्यागने वाली है। और तीसरा पवित्रता, जीवन में प्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। जितना प्योरिटी होगी उतना सब कुछ हमारे पीछे आगे परछाई की तरह आएगा, भागने की जरूरत नहीं है। प्योरिटी सबको आकर्षित करती है। देवताओं की मूर्तियां क्या है, प्योरिटी है, संपूर्ण प्योरिटी उनके जीवन में झलकती है, मूर्ति में झलकती है, तो सब लोग आगे पीछे आते हैं, हालांकि वो जड़ है। मंदिरों में कितना लाखों करोड़ रुपए का सोना अर्पित कर देते हैं, किसके लिए, बिना मांगे। मूर्ति मांगनी थोड़ी जाती वहां। हाँ, प्योरिटी के कारण ही हमारी जड़ चित्रों की यादगार बनी हुई है। तो जड़ चित्र इतना संसार में करोड़ों रुपए की कीमत का सोना अर्पित कर देते हैं, जड़ मूर्ति मांगनी थोड़ी जा रही। तो हम भी उसी तरह से हमारे में वो प्योरिटी पूरी झलकती रहनी चाहिए। कई बताते ना सेंटर में, जिस सेंटर में बहुत अच्छी प्योरिटी है, सेंटर संपन्न है, प्योरिटी का अभाव है तभी समस्याओं के कारण लड़खड़ाते रहते हैं। और हाँ, तो वो हमको अभी स्मृति में रहने का टाइम है अभी। फिर नेक्स्ट है जीवन में वैराग्य। वैराग्य की तलवार हमेशा धारदार लगी रहनी चाहिए उसको। कौन कौन सी चीजों से हमारा राग है उसको काट देना है, छोड़ देना। कुछ भी हो जाए, थोड़े दिन ही दुखी होगा कोई, फिर सदा के लिए सुखी हो जाएगा। हम सोचते हैं हमारा उससे बहुत प्यार है, या वो सोचते हैं हमारा उनसे प्यार है। किसी का किसी से कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये है कौन सी दुनिया, धोखेबाजों की दुनिया है, धोखों की दुनिया, दुख ही दुख है, धोखे धोखे, कोई अपना नहीं है। तो वैराग्य की तलवार हमेशा धारदार अग्नि बुद्ध दिखती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है साधना। साधना के पथ पर हमको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, मुक्त गगन के पंछी बनकर। अब लास्ट डाली पर बैठना, जो हमारा अपना घर है। और उसके बाद है प्रेम, प्रेम की अग्नि, प्रेम की छत्रछाया, परमात्मा प्रेम की छत्रछाया में हमेशा हम रहेंगे। तो मोक्ष की अनुभूति करना बहुत सहज है, आसान है, हमारे लिए सुगम है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो बाबा ने कितना निश्चल, इतना सुंदर जीवन दिया है। ओहो प्रभु तेरी लीला कितनी न्यारी प्यारी है। ओम शांति।
मन के पंछी हो।